अगले दिन प्रियल निक के घर जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसके मन में बेचैनी थी, निक से मिलने को लेकर और कपड़े धुलवाने को लेकर भी। प्रियल तैयार होते हुए बोली, कैजुअल्स ही पहन लेती हूँ। आई नो वो मुझसे कपड़े नहीं धुलवाएंगे, लेकिन उनके माइंड का कोई कुछ नहीं कह सकता। किसी महान इंसान ने कहा है कि लड़कियों को समझना मुश्किल है, पर मैं उस इंसान से ये कहना चाहूंगी कि वो एक बार कैप्टन निक से मिल ले। प्रियल खुद से ही बात करते हुए बोली। आईने के सामने खड़ी होकर तैयार होते हुए वो ऐसी हरकत कर रही थी। तभी आरोही प्रियल के पास आई। उसने प्रियल को आईने से बात करते हुए सुन लिया। ये देखकर आरोही बोली, पागल हो गई है क्या जो खुद से ही बातें कर रही है? मानो प्यार में पड़ गई हो। मगर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ऐसी हरकतें करके पागलखाने जाने की तैयारी कर लो। जी बिल्कुल नहीं, निक के यहाँ जा रही हूँ, उसके घर जाने की तैयारी कर रही हूँ। उसका घर किसी पागलखाने से कम नहीं है क्या? ओहो, एक और डेट। आरोही उसके पास आई और उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया। अब तो तुम्हारे मजे ही मजे हैं। देख मेरा दिमाग ऐसे ही खराब है और मत कर। डेट? कोई डेट सेट नहीं है बिल्कुल। मैं तो उनके कपड़े धोने जा रही हूँ, कल सूप गिर गया था गलती से। प्रियल ने आरोही को खुद से अलग किया और दूसरी तरफ जाने लगी। वेरी गुड बेटा, बस अब यही बाकी रह गया था। कीप इट अप, आरोही तीखे मुंह से बोली। लोग प्यार में जान देते हैं, तुम कपड़े धोना। हाँ अब तुम भी मजे ले लो। एक बात बताऊं, प्रियल बोली और उसकी ओर देखने लगी, और ये बात मुझे और भी परेशान कर रही है। इससे पहले प्रियल कुछ बताती, आरोही ने कंधे उठाए और बोली, इसमें बताना क्या है? आई नो तुझे कपड़े धोने नहीं आते। तुझे कैसे पता? मैंने तुम्हारे धोए हुए कपड़े देखे थे। एक बार मशीन खराब हुई थी तो तुमने खुद अपने हाथों से कपड़े धोए थे। तुम उनका साबुन तक नहीं निकाल पाई थी। प्रियल ने मायूस सा चेहरा बनाया। हाँ, कपड़े धोने के मामले में मेरा रिकॉर्ड खराब ही है। पता नहीं किस घड़ी में उन्हें हाँ बोल दिया। मैंने तो टिश्यू से साफ करने को कहा था और उन्होंने घर ही बुला लिया। फिर उसने घड़ी की तरफ देखा। चल जाती हूँ, अब 9 बजने वाले हैं वैसे भी। ऑल दी बेस्ट, तुम्हारा अब ऊपर वाला ही मालिक है, आरोही बोली और हंसते हुए वहां से चली गई। तकरीबन 40 मिनट के बाद प्रियल निक के घर पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया। ये उसका वो नॉर्मल घर था जो पब्लिक था। दरवाजा निक की बजाय एक हाउस हेल्पर ने ओपन किया। प्रियल ने पहले तो उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, फिर हैरानी से बोली, वेयर इज सर? ही इज इन बाथरूम एंड वेटिंग फॉर यू, हाउस हेल्पर ने जवाब देते हुए कहा। यह सुनकर प्रियल के दिल की धड़कन बढ़ गई। प्रियल मन में सोचते हुए बोली, अब क्या सच में मुझसे कपड़े धुलवाएगा वो? मुझे तो कपड़े धोने ही नहीं आते हैं। अगर वो धब्बा नहीं निकला तो बोल दूंगी कुछ दाग अच्छे होते हैं। वो अपने मन में ही उठापटक बात करने लगी। क्या प्रियल, तुम ये जानती हो अगर धब्बा नहीं निकला तो वो तुम्हें निकाल देगा, वो भी अपने घर से नहीं बिल्कुल इस दुनिया से। प्रियल ये कहकर पहले घर में गई, फिर बाथरूम में गई। निक बाथरूम में ड्रायर से अपना ही शर्ट सुखा रहा था। उसकी शर्ट पर हल्का सा पानी गिर गया था। ये उसकी फेवरेट शर्ट थी तो वो उसे सुखाने के लिए यहाँ आ गया था। निक ने प्रियल को आते हुए देखा तो कहा, अरे वाह मिस शर्मा, आप तो पूरी तैयारी के साथ आई हैं। प्रियल ने हल्का गेटअप ले रखा था। फिर वो मुस्कुराता हुआ बोला, आपको क्या लगा सच में मैं आपसे कपड़े वॉश करवाऊंगा? प्रियल मन में गुस्से वाले अंदाज में बोली, आपका कोई भरोसा नहीं है। फिर उसने सामने कहा, तो फिर क्यों बुलाया यहाँ? निक कुछ बोलता उससे पहले डोरबेल बजी। डोरबेल की आवाज सुनकर निक का ध्यान दरवाजे की ओर चला गया। निक ने कहा, इस वक्त कौन आया होगा? फिर उसने प्रियल को कहा, एक काम करना प्रियल, प्लीज बाथरूम में रहना, बाहर मत आना जब तक मैं ना आऊं। ये कहकर वो बाहर दरवाजे की तरफ चल पड़ा। उसका हाउस हेल्पर दरवाजा खोलने वाला था, लेकिन निक ने इशारा कर उसे पीछे रहने को कह दिया। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने मेन डोर के लॉक से देखा। बाहर उसे मिस्टर दत्ता और मिस्टर जॉनसन खड़े दिखे। व्हाट द हेल, निक ने उन्हें देखते ही कहा, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर प्रियल है, दत्ता ने उसे यहाँ देख लिया तो? तभी डोरबेल फिर से बजी। निक ने कुछ देर तक खड़े रहकर सोचने का काम किया, फिर दरवाजा खोला। हेलो, आप लोग यहाँ? मिस्टर दत्ता, उसने मिस्टर दत्ता को देखकर उनका नाम लिया। मिस्टर जॉनसन, वो हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमें रास्ते में आपका घर दिख गया, घर देखा तो सोचा आपसे आकर मिल भी लें। वो ये कहने के बाद हल्का सा हंसे। कैप्टन निक ने सीरियस चेहरे के साथ कहा, और वो किस लिए? मिस्टर जॉनसन बोले, असल बात यह है कि हम लोग यहाँ से मीटिंग के लिए जा रहे थे, वो भी तुम्हारे होटल में। जाने से पहले हमारी मैनेजर से बात नहीं हो पाई तो सोचा डायरेक्ट तुमसे बात करके रूम का अरेंजमेंट करवा लिया जाए, तुम कर दोगे? निक नहीं चाहता था वो दोनों घर के अंदर आए। उसने इधर उधर देखा और फिर बाहर सड़क पर आकर अपना फ़ोन निकाल लिया और रूम का अरेंजमेंट करने लगा। निक के घर पर आने की उनकी वजह कुछ और थी। मिस्टर जॉनसन शहर छोड़कर जाना चाहते थे, मगर जाने से पहले अपने बेटे निक को एक बार देखना चाहते थे, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी प्रभास दत्ता को मिस्टर जॉनसन को यहाँ लेकर आना पड़ा। प्रियल ने बाथरूम में अर्जुन और प्रांजल को वीडियो कॉल लगा लिया। वीडियो कॉल करने के बाद तीनों आपस में बात करने लगे। अर्जुन ने कहा, देख प्रियल, इस बार वो तुमसे कितनी भी माफ़ी मांग ले, लेकिन तुम्हें उसे माफ़ नहीं करना है। प्रांजल उसकी ठीक बात बोली, हाँ दी, उसने तुझे बहाना बनाकर यहाँ बुलाया और वो भी कपड़े धुलवाने के लिए, मत माफ करना, प्रियल ने मायूस सा चेहरा बनाया। पर यार वो मुझे मना लेगा, और कपड़ों का अभी तक उसने कंफर्म नहीं किया। कह तो रहा था किसी और चीज के लिए बुलाया है, मगर चेहरे से लगता नहीं, वो काफी कॉन्फिडेंट रहता है। अर्जुन बोला, तो तुम भी कॉन्फिडेंट रहना कि मुझे नहीं मानना। और दी, याद कर उसने तुम्हारा क्या बोला था, प्रांजल बोली। और कपड़े वॉश करवाए तो धो देना, अर्जुन ने कहा। प्रियल ने दोबारा मायूस चेहरा बनाया, मुझे कपड़े धोने नहीं आते। अरे पागल, वॉशिंग मशीन भी नहीं होगी क्या उसके पास, अर्जुन कैमरे के पास आता हुआ बोला। पर इसे तो मशीन से भी नहीं धोने आते, प्रांजल सोचते हुए बोली। प्रियल ने अचानक कहा, मैं यूट्यूब पर वीडियो देख लूंगी। हाँ, प्रांजल बोली, पर कुछ भी हो जाए इस बार तुझे उससे बिल्कुल बात नहीं करनी। फोकस प्रियल, फोकस, अर्जुन ने जोर दिया। उसकी नीली आंखों में बिल्कुल भी मत देखना। वैसे हनी सिंह ने ठीक ही कहा है, ब्लू आईज हाइपोटाइज तेरी करती है मैनू, प्रांजल बोली। ये पागल हो गया है, प्रियल ने गहरी सांस ली। हाँ, मैंने भी डिसाइड किया था कि इस बार कुछ भी हो जाए मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी। पर क्या करूं यार, जब वो सामने आते हैं तो मुझसे नहीं रहा जाता। प्रियल कभी एटीट्यूड में आ रही थी तो कभी अपने एटीट्यूड को छोड़ रही थी, अर्जुन फौरन बोला। तो सामने ही मत आओ, कल पूरा दिन छुपी नहीं थी, प्रियल ने कहा। पर पता नहीं रात को कैसे उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। फिर उसे कपड़े देखे, उसने कहा, अच्छा बाय, मुझे वीडियो भी देखना है। कपड़े वॉश करवाएंगे तो ठीक है, वरना चली जाऊंगी, पर इस बार उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आऊंगी, कहकर प्रियल यूट्यूब पर वीडियो देखने लगी। तभी निक आया और बाहर से उसे देखने लगा। प्रियल कपड़े धोने का ट्यूटोरियल देख रही थी। निक हंसा और उसने कहा, नहीं धुलवाऊंगा कपड़े, आ जाओ बाहर, मैं कहकर तो गया था मैंने तुम्हें यहाँ कपड़े धोने के लिए नहीं बुलाया, फिर भी तुम ये सब करने में लगी पड़ी हो। प्रियल खड़ी हुई और बोली, तुम मुझे यहाँ क्यों बुलाया, उसने थोड़ा सा ईगो दिखाया था। निक ने सोचते हुए कहा, अच्छा तो मैडम इस बार कुछ ज्यादा गुस्सा है, लगता है उस रात इसने जो भी सुना ये उसे अभी तक नहीं भूली है। फिर वो बोला, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं साथ में, प्रियल गुस्से में बोली। मुझे भूख नहीं है, और दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई।
तुम आओ तो सही, निक ने कहा। निक प्रियल को जबरदस्ती डाइनिंग टेबल पर ले गया। थोड़ी देर बाद निक वहां पर ब्रेकफास्ट कर रहा था और प्रियल इधर उधर देख रही थी। निक ने पूछा, तुम खाना नहीं खाओगी? नहीं, प्रियल ने कहा। तो क्या खाओगी? कुछ भी नहीं, प्रियल ने नाराजगी दिखाई। और वो क्या, मैं ब्रेकफास्ट करके आई थी। ओके, तो मैं तुम्हें कॉफी बना देता हूँ, निक ने उसकी टांग खींचने के इरादे से ये बात कही, मगर प्रियल ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसने अपनी बात बदली और कहा, ओ सॉरी, मैं भूल गया था, तुम्हें तो कॉफी पसंद नहीं है, ग्रीन टी, वो चलेगी? नो, प्रियल ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा रखा था। आइसक्रीम ला दूं, चॉकलेट, कुकीज या कुछ और? देखिए, बातों में मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, कहाँ है आपकी कल वाली शर्ट, मैं अभी वॉश करती हूँ और चली जाती हूँ। प्रियल को एटीट्यूड दिखाना नहीं आता था तो उसने नकली एटीट्यूड दिखाते हुए ये बात कही। निक ने जूस पीते हुए कहा, वो तो मैंने कल रात को ही साफ करवा ली थी, ये कहकर उसने एक सिंपल सी मुस्कुराहट दी। ठीक है, मैं चलती हूँ फिर, बाय, वो खड़ी हुई और जाने लगी। अपने नकली एटीट्यूड में वो ये सब कर रही थी, मगर निक ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अरे रुको तो, वो बोला। प्रियल बोली, देखिए सर, मैं यहाँ आपके कपड़े धोने के लिए आई थी, कपड़े नहीं है तो मैं जा रही हूँ, प्रियल ने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। ठीक है, बाथरूम में और भी कपड़े पड़े हैं, वो साफ कर दो, निक ने हाथ छोड़ा और हल्के से एटीट्यूड में बोला। तुम उन्हें धोगी? अरे ऐसे कैसे कर दूं, प्रियल बोली, मैंने जो कल रात को आपके कपड़े खराब किए थे वही कपड़े साफ करूंगी मैं तो, बाकी के मैं क्यों साफ करूं। प्रियल को अपनी बात अपने पर ही भारी पड़ती लग रही थी, इसलिए उसने बचने का बहाना तलाश किया। अच्छा ऐसा भी है क्या? हाँ ऐसा ही है। अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, रुको मैं अभी आता हूँ। निक ऊपर अपने रूम में गया और वही टी शर्ट पहनकर आ गया जो उसने कल रात को पहनी थी, साथ में उसके हाथ में दो तीन और टी शर्ट थी। प्रियल ने जब निक को ऐसे आते हुए देखा तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। निक ने आकर कहा, प्रियल वो जूस का ग्लास देना एक बार, प्रियल कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। निक ने दोबारा कहा, देना मुझे जूस का ग्लास, प्रियल ने ग्लास उठाया और उसकी ओर कर दिया, मगर जैसे ही वो जूस पकड़ाने लगी निक ने उसका हाथ पकड़ के सारा जूस अपने सभी कपड़ों पर गिरा दिया। प्रियल ये देखकर सन रह गई। निक ने ये करके कहा, चलो आ जाओ, उठाओ सारे कपड़े और चलो बाथरूम में। प्रियल मन में बोली, आज तो बुरे फंसी प्रियल, ये बंदा तो दिमाग वाला निकला। प्रियल सारे कपड़े लेकर बाथरूम में आ गई। वहां आकर उसने पूछा, वॉशिंग मशीन कहाँ है? निक ने कहा, नहीं है, मेरे यहाँ कौन सी मशीन, मैं तो खुद अपने कपड़े लॉन्ड्री में भेजता हूँ। क्या हाथ से धोने पड़ेंगे? वो हक्की बक्की खुद को देखने लगी। निक ने कहा, अगर आपको पैर से धोने आते हैं तो आप पैरों से धो दीजिए। निक ने अपने चेहरे पर एक भाव तक नहीं दिया। प्रियल ने मुंह मरोड़ा और एक बाल्टी में पानी भरा, वो भी गुस्से में आ गई थी। उसने बाल्टी में बहुत सारा डिटर्जेंट डाल दिया जिससे पूरे बाथरूम में झाग ही झाग हो गए। प्रियल धीरे धीरे कपड़ों को पकड़कर उसे जोर जोर से फटकार कर बाल्टी में डालने लगी। फिर उसने सारे कपड़े निकाल लिए और उन्हें फर्श पर फेंक दिया। फिर नीचे बैठी और उन्हें घिसने लगी। निक बाथरूम के गेट के पास उसे देखकर पहले तो नॉर्मल खड़ा रहा, मगर फिर उसकी हरकत देखकर उसे हल्की हंसी आने लगी। ये हंसी मुस्कुराहट के रूप में उसके चेहरे पर थी। निक ने सोचते हुए कहा, कैसी पागल लड़की है ये, कोई ना चाहे तो भी इससे प्यार हो जाए। फिर वो उससे बोला, प्रियल, बाबा, मुझे पता है तुम्हें कपड़े धोने नहीं आते, चलो छोड़ो और आओ मेरे साथ। मुझे नहीं आना, प्रियल ने गुस्से में कहा। अरे रहने दो, आज मेरे कपड़ों की ऐसी तैसी हो जानी है, छोड़ो मैं इन्हें बाहर से धुलवा लूंगा। ऐसे कैसे बाहर से धुलवाओगी, इसे तो अब मैं ही धोकर रहूंगी, प्रियल ने कहा और एक शर्ट को जोर से उठाकर दोबारा नीचे मारा। अरे मेरी माँ, गलती हो गई मुझसे, मुझे तुम्हें कपड़े धोने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था, निक ने कहा और बाथरूम में आकर अपनी सारी कमीजें उससे ले ली। हे भगवान, मेरे कपड़े, प्रियल खड़ी हुई और कपड़े छीनने की कोशिश की। मुझे दीजिए वापस कपड़े। नहीं प्रियल, नहीं, निक भी उन्हें खींचने लगा। तभी एक कमीज फट गई और उसके फटने की वजह से प्रियल पीछे की ओर फिसल कर गिरने लगी। बाथरूम में झाग ही झाग था। निक उसे पकड़ने के लिए गया मगर वो भी फिसला और नीचे गिर गया। गिरते गिरते उसने प्रियल को पकड़ लिया था तो प्रियल उसके ऊपर गिर गई थी। माहौल थोड़ा डांस हो गया था, प्रियल अपने गुस्से को भूल गई। निक का भी कुछ यही हाल था। प्रियल ने कहा, सॉरी सर, मैंने आपकी कमीज खराब कर दी, छोड़ो और ले लेंगे, निक ने कहा। फिर उसने अपना हाथ आगे किया और प्रियल के बाल अपने चेहरे से हटाते हुए कहा, और सॉरी मेरी तरफ से भी। आपकी तरफ से क्यों? मैंने कल जो कहा मुझे नहीं कहना चाहिए था, कई बार मैं खुद से कंट्रोल खो देता हूँ, होता है, सबके साथ ऐसा होता है। हाँ मगर आई प्रॉमिस अब ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैंने आपको माफ कर दिया। ओह ग्रेट, निक बोला और उसे देखने लगा। प्रियल भी उसे देखने लगी। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। इसके बाद निक ने कहा, प्रियल? प्रियल बोली, हाँ। तुम? मैं क्या? तुम बहुत भारी हो, निक ने कहा और एकदम से उसे साइड में कर खड़ा हो गया। कुछ देर और मेरे ऊपर लेटी रही तो मेरी जान ही निकल जानी है। प्रियल भी अपनी जगह से खड़ी हुई। क्या सर, मैं इतनी भी भारी नहीं हूँ, और कहा। दोनों ही नॉर्मल हो गए और अपने अपने कपड़ों से झाग को हटाने लगे। दोनों थोड़ा थोड़ा गीला भी हो गए थे मगर ज्यादा नहीं। निक ने कपड़े साफ करने के बाद प्रियल को कहा, चलो माफ कर दिया है तो बताओ। निक ने पूछा, भूख लगी है तुमको, कुछ खाओगी? बहुत जोर से। क्या खाओगी? तुम बोलो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बना कर दूं। कुछ भी चलेगा, मुझे स्पेशल में कुछ भी नहीं चाहिए, प्रियल बोली। अगले ही पल निक और प्रियल साथ में ब्रेकफास्ट करने लगे। निक ने कहा, मुझे पता था इस बार तुम मुझसे बहुत गुस्सा थी, तुमने इस बार पक्का डिसाइड भी किया हुआ था मुझे माफ नहीं करोगी। प्रियल बोली, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था। तो कैसा था मिस शर्मा, आप ही बता दीजिए। आपने ही तो कहा था कि मैं आपको अपने आसपास नहीं चाहिए, बस तभी सामने नहीं आ रही थी। अच्छा, जैसे मेरी सारी बात मानती हो, मैंने गुस्से में बोला था यार, उसके लिए आई रियली आई एम सॉरी मिस शर्मा। हाँ हाँ, कर दिया माफ, प्रियल बोली। अब और कितनी बार सॉरी बोलेंगे आप? निक मुस्कुराया और फिर दोनों खाना खाने लगे। निक खाना खाने के बाद प्रियल को अपनी लाइब्रेरी के अंदर बने सीक्रेट रूम में ले गया। उसने अपने मन में कहा, आज मैं सारी बातें से क्लियर कर लेना चाहता हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं रखूंगा जो इसे ना पता हो। ये सोचकर निक ने प्रियल से कहा, एक बार तुमने पूछा था ना कि एली कौन है, आज तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दूंगा मैं। लाइब्रेरी के अंदर सबसे पहले निक ने प्रियल को अपनी माँ की पिक्चर दिखाई जिसमें उसके साथ एली भी थी। निक ने कहा, ये एली है प्रियल, मेरी जान बसती थी इसमें, मेरा पहला प्यार, मेरी जान, धड़कन, मेरा सब कुछ, मेरा प्यार, मेरी एली, उसने तस्वीर में खोते हुए कहा था। प्रियल ने जब ये सुना तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा, मानो उसके सारे सपने टूट गए हों। उसने इस चीज की उम्मीद नहीं की थी। वो लड़खड़ाकर गिरने लगी, मगर तभी निक ने उसे संभाल लिया। निक ने कहा, प्रियल संभालो खुद को। निक ने उसके हाल को समझ लिया था मगर वो कुछ भी खुद से नहीं कहना चाहता था। प्रियल की आंखों में आंसू आने लगे थे। वो निक के सामने नहीं रहना चाहती थी। वो मुड़ी और उसने जाने का डिसीजन लिया। वो जाने लगी तभी निक बोला, रुको प्रियल, मेरी पूरी बात नहीं सुनोगी? प्रियल प्लीज मेरे लिए। निक ने ये कहा तो प्रियल अपनी आंखों के आंसू छुपाकर रुक गई। निक ने कहा, एली अब दुनिया में नहीं है प्रियल। प्रियल मुड़ी और हैरानी से बोली, व्हाट? पर कैसे? वो इस बात पर भी यकीन नहीं कर पा रही थी।
मिस्टर दत्ता की वजह से, निक ने कहा और ना चाहते हुए भी रोने लगा। प्रियल पहली बार निक को ऐसे रोते हुए देख रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो उसके पास आई और उसे गले से लगा लिया। सॉरी सर, मेरे इंटेंशंस आपको हर्ट करने के नहीं थे, वो बोली। निक ने कहा, वो मेरी मॉम है प्यारी, और मेरे डैड कौन है और कहाँ है मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। जब मैं एक साल का था तो मेरे मॉम डैड में कुछ इश्यूज हो गए थे और मॉम मुझे यहाँ लेकर आ गई। यहाँ मुझे एली मिली। एली एमा और एवा की बड़ी बहन थी। मेरी मॉम ने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। वो एक डॉक्टर थीं। वो चाहती थीं कि मैं सिंगर बनूं और मैं उनके सपने को पूरा करने के लिए सिंगिंग ट्रेनिंग भी ले रहा था। लेकिन एक दिन जब मैं क्लास हुआ था तो मॉम के हॉस्पिटल में ब्लास्ट हो गए थे और वो वापस कभी आई नहीं। प्रियल फिर बोली, आई एम सॉरी, निक ने आगे कहा। तब एली ने मुझे संभाला। मॉम हमेशा से चाहती थी कि मैं और एली शादी करें, और मॉम के जाने के बाद मैंने और एली ने उनकी मौत के बारे में पता लगाने के लिए स्पेशल फोर्स ज्वाइन किया। हम ट्रेनिंग सेशन में ही थे कि मिस्टर दत्ता जानबूझकर एली को एक खतरनाक मिशन पर भेजा जहां उसकी मौत हो गई। प्रियल बोली, तो इसलिए आप उनसे इतनी नफरत करते हो। मॉम की मौत हुई थी तो मुझे संभालने के लिए एली थी, पर जब एली की मौत हुई तो मुझे संभालने वाला कोई नहीं था और मैं इमोशनल ट्रॉमा में चला गया, और लगभग 2 साल तक मेरी वैसी ही सिचुएशन बनी रही और मैंने 2 साल ट्रॉमा सेंटर में बिताए। जब धीरे धीरे मेरी हालत में सुधार आया तो एमा ने मुझे बताया कि मिस्टर दत्ता की वजह से एली की मौत हुई थी, और फिर मैंने और एमा ने मिलकर फिर से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी, इस पोजीशन तक पहुंचे कि मिस्टर दत्ता को उनके क्राइम के लिए सजा दिला सके। आई एम सॉरी, वो मेरे, प्रियल अलग हुई और कहा, मुझे नहीं पता था वो इस हद तक गिर सकते हैं। मुझे पहले से ही उनसे नफरत थी, मगर अब मेरी नफरत और भी ज्यादा हो गई है। मुझे माफ कर देना सर, प्रियल अपनी बात पूरी करती उसे पहले निक ने कहा। नहीं प्रियल, अब इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं पहले भी तुम्हें 2 बार गलत समझ चुका हूँ, पर अब नहीं। पता है, मैं किसी को नहीं समझ पाता कि उसके मन में क्या चल रहा है या उसके मन में मेरे लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्योंकि मैं एली के बिना आगे कभी बढ़ नहीं पाया, या यूं कहूं कि बढ़ना ही नहीं चाहा। मैं आपकी हेल्प करूंगी मिस्टर दत्ता के खिलाफ, प्रियल बोली। उसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी भी जान खतरे में नहीं डाल सकता। तो मैं अब क्या करूं आपके लिए, प्रियल ने मासूमियत से पूछा। आप जो कहोगे मैं वो करूंगी, बस मुझे माफ कर दो। अरे नहीं, वो तो कब का कर दिया, आप बार बार माफी क्यों मांगते हो? क्योंकि मुझे लगता रहता है सामने वाले ने मुझे माफ नहीं किया, शायद तभी कोई किसी को इग्नोर करता है, जैसा कि कल तुमने किया। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने आपको माफ कर दिया और मैं आपको इग्नोर भी नहीं कर रही। कल तो कर रही थी, वो तो मैं खुद गुस्से में थी। गुस्से में ऐसा हो जाता है, मुझे नहीं पसंद आता ये, तो मैं नहीं करूंगी अब से, प्रियल बोली और अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट दे दी। अब से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जो आपको तकलीफ दे, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो, तुम समझ ही गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, प्रियल हंसी और बोली, समझ गई। फिर दोनों एक दूसरे के गले लग गए। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे के गले लगे रहे। कुछ देर गले लगे रहने के बाद निक बोला, अच्छा तो एक काम करोगी, मुझे कपड़े धोने नहीं आते, प्रियल उससे पहले ही बोल पड़ी। निक ने कहा, पता है, देख क्या था मुझे, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ। तो किसके लिए? दरअसल बात यह है कि मॉम के जाने के बाद सिर्फ मैं अकेला नहीं हुआ था, बल्कि जैन भी अकेला हुआ था। प्रियल ने पूछा, जैन कैसे? जैन ऑर्फनेज में था, मॉम जाती थी वहां और जैन उनके लिए बेटे के जैसा ही था। मॉम ने जैन को अडॉप्ट किया था, बस तब से मेरे लिए जैन है बस, और उसके लिए मैं। ठीक है, तो मैं इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? तुम मेरा साथ दे सकती हो जैन और आइलिया की डेट अरेंज करने में? ओह, क्या वो दोनों? हाँ, वो दोनों तैयार हैं, प्रियल बोली। ठीक है, कर दूंगी। दोनों कुछ देर तक और एक दूसरे के गले लगे रहे, इसके बाद अलग हुए और लाइब्रेरी से बाहर चले गए।